मेरे आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2017 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं। मैंने थोड़ा सा लिटरेरी इस्तेमाल आज कर लिया है। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की बस कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली क्लासेस में अपना एडमिशन लिया है। और इन मित्र का नाम है अनिरुद्ध उपाध्याय, जो सागर मध्य प्रदेश से हैं। तो अनिरुद्ध, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी बात अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी क्लास में आने वाले हैं, और नो डाउट उनके लिए भी कि जिन जो अभी मेंस कुछ ही दिनों के बाद मेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। और सच पूछिए तो हर उस स्टूडेंट के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ करने वाला है, और मैं समझता हूं कि हर कोई कुछ ना कुछ करने वाला होता ही है, यानी कि सबके लिए। मित्रों, दिवाली आने वाली है और जो स्टूडेंट घर से रवाना होंगे यहां भोपाल आने के लिए, उनके आने में भी अब 10 दिन से भी कम वक्त रह गया है। वो दूरी पर डिपेंड करेगा। फ्रेंड्स, जो अब सबसे बड़ी बात है, देखिए इससे पहले दो दिनों तक मैंने आपसे मनोवैज्ञानिक तैयारी की बात कही थी और मुझे लगता है कि आप सब ने उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया होगा। मित्रों, अब मैं उसी से जुड़े हुए एक दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं, और यह है शारीरिक तैयारी, यानी कि फिजिकली फिटनेस। दोस्तों, केवल मानसिक रूप से ही आपको स्वस्थ नहीं रहना है, बल्कि शारीरिक रूप से भी आपको उतना ही अस्वस्थ रहना है। फ्रेंड्स, अब क्लास शुरू होने में केवल 10 दिन रह गए हैं और लगातार आपको 15 दिनों तक एक अनुशासन का पालन करना है, जो आपको खूब मजा आएगा। और वो अनुशासन भी ऐसा नहीं है जो आप पालन नहीं करते रहे हैं, हो सकता है कि बीच में ब्रेक आ गया हो, अब आप फिर से उसे दोहराएंगे, बस इतना ही है। और आप एक उद्देश्य से आ रहे हैं, एक पर्पस से आ रहे हैं 15 दिन, जिसके लिए आपने फीस दी है, जिसके लिए आप अपने घर को छोड़कर या अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के 15 दिन यहां आएंगे। और एक विश्वास लेकर भी आ रहे हैं कि आपने जो सपना पाल रखा है या जो उद्देश्य बना रखा है, वो सपने उस सपने उन सपनों को पूरा करने में, आपके उद्देश्य को पाने में ये 15 दिन मददगार सिद्ध होंगे। लेकिन ये तभी संभव हो सकेगा जब आप फिजिकली फिट होंगे, क्योंकि यदि आप क्लास अटेंड ही नहीं कर सकेंगे या बीच में किसी वजह से शारीरिक बीमारी की वजह से आपको गैप लेना पड़ गया, रेस्ट करना पड़ गया, या आप बैठे हुए तो हैं लेकिन फिजिकली आप फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग आपका बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि अब आप अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दें। मित्रों, ये उसी तरीके से है, अब बचे हुए 10 दिन जैसे कि खिलाड़ी खेल शुरू करने से पहले वार्मिंग अप करता है, है ना, थोड़ा सा उछलता कूदता है, शरीर को अकड़ता है, इधर उधर हिलता डोलता है ताकि शरीर खुल जाए। मित्रों, दो तीन बातें मैं स्पेशली कहना चाहूंगा। अपने डाइट सिस्टम को बिल्कुल सही रूप में ले आइए, बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए, तली चीजें, मसाले वाली चीजें जो होती हैं अब बिल्कुल बंद कर दीजिए। मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं तो पचा लेता हूं, न घर में खाइए न बाहर खाइए, लाइट भोजन कीजिए, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा कम ही भोजन कीजिए, शरीर को उतने भोजन की जरूरत नहीं होती है। मित्रों, रिस्क वाली जगह से बचिए, जैसे कि दिवाली के समय में पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं, तो पटाखे फोड़ने से बचने की कोशिश कीजिए। और खासकर उस दिन पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अपने को घर से बाहर निकलने से रोकिए, बंद होकर के बैठ जाइए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए मित्रों आप आ रहे हैं, अपने शरीर पर इतना ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क इन्वॉल्व हो, जैसे आप देखिए कि डेंगू, स्वाइन फ्लू, इन सब की चर्चाएं अखबारों में हो रही हैं, तो प्लीज उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि आप फुल स्लीव की शर्ट पहने, आप ऐसी जगहों पर, गंदगी वाली जगहों पर न जाएं जहां मच्छर ज्यादा होते हो, जिसके काट लिए जाने की संभावना हो। अपने गले का ध्यान रखें कि वो खराब न हो पाए, ताकि सर्दी बुखार न हो, क्योंकि गले के से भी सर्दी बुखार होने का एक की आशंका रहती है। फ्रिज का एकदम ठंडा पानी न पिएं, बचने की कोशिश करें, एकदम गर्म से ठंड में, ठंड से गर्म में या न जाएं कि एकदम एसी से निकल करके आप धूप में चले गए हैं, अभी के धूप से भी बचने की कोशिश कीजिए। ये धूप बहुत नुकसानदायक होती है। तो मित्रों, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ, इन सब पर ध्यान दीजिए ताकि आप शारीरिक रूप से अपने को बहुत स्वस्थ महसूस कर सकें और यहां के 15 दिनों का पूरा लाभ ले सकें। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में आपको बता दूं, मैं हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बाल विवाह के ऊपर, राइट, आज के मुख्य विषय के रूप में। लेकिन इससे पहले मैं जो एक दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको बताना चाहूंगा। कल कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, कई डिसीजंस लिए हैं, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो खासकर कौशल विकास को लेकर, स्किल इंडिया को लेकर के अभी की सरकार का बहुत जोर है इस पर। आपको मालूम है कि भारत में दक्ष श्रम की बहुत ज्यादा कमी है, बेहद कमी है, और डेफिनेटली अगर हम श्रम को दक्ष बना दें, कुशल बना दें, स्किल्ड कर दें, तो उनकी आय बढ़ जाएगी और जीवन स्तर में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो इसको लेकर के पहले से ही आपको मालूम है कि बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। कल सरकार ने दो और प्रोग्राम की घोषणा की है, एक है संकल्प और दूसरा है स्ट्राइव, जिसे आप सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। जो संकल्प है मित्रों, SANKALP, उसका इंग्लिश में है स्किल्स एक्विजिशंस एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। मतलब यह कि हमारे जो जीवन यापन का जो साधन है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो कुशलता चाहिए, मैकेनिकल दक्षता चाहिए, और जो ज्ञान चाहिए वो प्राप्त करना, एक्विजिशन का मतलब है वो हासिल करना, स्किल हासिल करना और नॉलेज अवेयरनेस हासिल करना। किस चीज के लिए हासिल करना? जो हमारे जीवन यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं खेती का ही काम कर रहा हूं तो इसको कैसे मैं और अच्छे से कर सकता हूं, मैं लकड़ी काटने का ही काम कर रहा हूं तो कैसे मैं लकड़ी को बहुत अच्छे से काट सकता हूं। मैं बहुत ही नीचे स्तर पर जाकर के आपसे बात कर रहा हूं। तो मित्रों, ये एक प्रोग्राम है, और दूसरा प्रोग्राम है वो है स्ट्राइव, STRIV, इसका फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। स्ट्राइव मतलब आपके स्किल को सुदृढ़ करेगा, यानी कि लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, है ना, वो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उनके स्किल को जो अभी काम कर रहे हैं उसी को और बेहतर बनाना है फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट। जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में उनकी वैल्यू बढ़ सके, और कुल मिलाकर के जब उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो इंडस्ट्री की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति चाहे छोटा काम कर रहा हो, बड़ा काम कर रहा हो, वो स्किल्ड लोगों को चाहता है कि उसमें वो दक्षता हो। और असल में जो हमारी जो एजुकेशन है वो क्या करती है, हमें दक्ष ही तो बनाती है। तो सरकार ने मित्रों ये संकल्प और स्ट्राइव नाम के दो प्रोग्राम की शुरुआत की है। दोनों नाम आपको मालूम होने चाहिए। प्री में इसकी संभावना होती है इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की, और मेंस में भी अगर स्किल इंडिया के ऊपर प्रश्न पूछ लिया गया कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो चूंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है तो ये दोनों प्रोग्राम आपकी जानकारी में होने चाहिए। इसके लिए सरकार ने 6655 करोड़ रुपए, 6655 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, और इसके तहत ही मित्रों वो 6 लाख युवाओं को, 6 लाख युवाओं को जो ऑन जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जापान भेजेगा, गवर्नमेंट भेजेगी, राइट। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मतलब न्यूज है, आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी जो खबर है फ्रेंड्स, वो नानाजी देशमुख की जयंती और जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर कल प्रोग्राम थे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है। कल के अगर आपने डीडी न्यूज कल का देखा हो तो उसमें आप देखेंगे कि नानाजी देशमुख का जो आर्थिक विकास का जो मॉडल है उस पर एक डिस्कशन था, और वो अच्छा डिस्कशन था। देखिए, नानाजी देशमुख के आर्थिक मॉडल के बारे में हम सब बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने, वो हमारे यहां के एक विचारक थे और बहुत बड़े, बहुत ही ऊंचे दर्जे के वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत ही त्यागी व्यक्ति रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि नानाजी देशमुख के परिवार के ही एक एग्जैक्ट रिलेशन में याद नहीं कर पा रहा हूं, एक लड़की, उस समय तो उनकी एज 22-23 साल की रही होगी, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। वो इंग्लिश में हम लोगों के साथ अंबिकापुर कॉलेज में पढ़ाया करते थे, बाद में तो फिर मैं इधर आ गया सिविल सर्विस में तो मुझे नहीं मालूम। तो नानाजी देशमुख के परिवार के थे और काफी क्लोज में वो थे। तो मित्रों, इनके जो आर्थिक विकास का मॉडल है, बस फिलहाल मैं इतना ही आपसे बताना चाहूंगा, फिर आप थोड़ी सी इसकी तैयारी भी कर लीजिएगा कि नानाजी देशमुख ने भी ग्रामीण स्वावलंबन की बात कही। उनका जो आर्थिक विकास का मॉडल था वो ये था कि गांव को अपने आप में स्वावलंबी बना दिया जाए, मतलब वो अपनी जरूरत की सारी चीजें पैदा कर लें और उन्हें किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। सच पूछे तो यही बात गांधी जी ने भी कही थी कि हमारे गांव स्वावलंबी होने चाहिए। ये इनके मॉडल का, मतलब यूं कह लीजिए कि मूल मंत्र है, केंद्रीय बिंदु है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि चूंकि जो अगर आप मॉडल को समझ लेते हैं तो चलिए भले ही प्रश्न सीधे सीधे नानाजी देशमुख के ग्रामीण विकास के मॉडल पर न पूछा जाए, लेकिन इनके मॉडल से आपके दिमाग में कुछ तथ्य आ जाएंगे कि हम अपने गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारे जो पहले के स्टूडेंट हैं उनको याद होगा, और अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप लोगों को एक गेस्ट लेक्चर डेढ़ घंटे का इस तरीके का होगा जिसमें आप जान सकेंगे कि गांव के चौतरफा विकास के लिए लोग अपने स्तर पर किस किस तरीके के काम कर रहे हैं। इसराइल का भी मॉडल आपको पता लगेगा। तो इन सब चीजों से होता क्या है कि हमारा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर सोचने लगता है कि नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वही हम अपने उत्तर लिखने में उपयोग में ले आते हैं और यही हमारे उत्तर को दूसरों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर बना देता है, राइट। और फ्रेंड्स, तो खबरें तो ये दो ही इंपॉर्टेंट थी। आइए अब मैं थोड़ी सी बात करूं आज के मुख्य विषय पर। और ये जो मुख्य विषय, आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है, और वो है ये है कि 15 से 18 वर्ष के बीच की अगर कोई पत्नी है, चाहे उसका विवाह ही क्यों न हो गया हो, लेकिन यदि पति उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो इसे दुष्कर्म माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर यह कि 18 वर्ष से कम उम्र की, यहां लड़की की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, पत्नी, विवाह हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पति उसके साथ संबंध बनाता है तो वह दुष्कर्म माना जाएगा और उसके लिए वो सजा उसको दी जा सकती है। ये बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का मित्रों। और नारी सशक्तिकरण और महिला से संबंधित जो टॉपिक होते हैं आपके सिविल सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मित्रों। इसको लेकर के मैं थोड़ी सी आपसे दो तीन चार चीजें शेयर करना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहां बाल विवाह की परंपरा बहुत पुरानी है। सच पूछिए तो अगर आप मनुस्मृति उठा करके देखें तो मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बेटी के रजस्वला होने से पहले ही उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि बहुत बचपन में, छोटी उम्र में उसका विवाह कर दिया जाए। चलिए, उस समय का समाज एक अलग तरीके का समाज था, उन्होंने अपने समाज की जरूरत के हिसाब से उस समय ये बात लिखी, और कहा यह जाता है कि फिर वहीं से ये परंपरा चली आ रही है और बीच में और इसे समर्थन मिलता रहा, कम उम्र में विवाह की परंपरा। लेकिन मित्रों, पहली बार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी तो आपको मालूम है कि कुछ जैसे सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, विधवा विवाह को स्वीकार करने वाला कानून बना, ये अंग्रेजों के समय में बना। बाल विवाह के खिलाफ 1929 में कानून बना था, 1929 में, हालांकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी, 1929 में कानून बना था। और उस कानून में जो उम्र निर्धारित की गई थी लड़के की 18 साल, मतलब जो न्यूनतम है, अगर लड़का 18 साल का है और लड़की 15 साल की है तो उनका विवाह किया जा सकता है, मतलब उनको बाल विवाह में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जब आजादी के बाद फिर 1978 में इस पर कानून बना तो उसमें इस उम्र सीमा को बढ़ा दी गई, जो आपको मालूम होना चाहिए। अब जो उम्र सीमा है वो लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल और लड़की की न्यूनतम आयु है 18 साल। इससे कम उम्र में शादी नहीं की जा सकती, वो अवैधानिक होगी, राइट। ये कानून है। अब होता क्या है कि कंट्राडिक्शंस ये हो जाते हैं फ्रेंड्स, कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 375 है, ये थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा धारा तो आपका उत्तर जरा सा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में ये मेंशन किया हुआ है कि यदि लड़की 15 साल से ऊपर की है और विवाहित है, मतलब पत्नी बन चुकी है, तो वह फिर अपराध नहीं है क्योंकि उनके पति पत्नी के संबंध है। अब आप देखें कि लेकिन भारत सरकार का ही जो 78 का कानून है, 1978 का, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और उसमें दिया हुआ कि 18 साल से पहले विवाह करना ही अपराध है। तो अब आप देखिए कि एकदम कंट्राडिक्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नहीं, विवाह की न्यूनतम आयु जो लड़की की होगी वो 18 साल होनी चाहिए। फिर दंड संहिता में ये किया गया है कि 15 साल से अगर उसकी उम्र अधिक है तो उसके साथ पति शारीरिक संबंध बना सकता है। आप एक सीधे सीधे आप कंट्राडिक्शन देख रहे हैं ना। तो कोर्ट ने यह बात कही कि भैया ये किसने इस तरह का कानून बनाया है। इतना ही नहीं बल्कि जो 2012 का, ये जो दो तीन मैं आपको कानून बता रहा हूं, ये आपको नोट करके और याद कर लेने चाहिए, और बल्कि नोट कर लेना चाहिए और बीच बीच में इनको दोहराते भी रहना चाहिए, क्योंकि ये जानकारियां आपके उत्तर को बड़ा मजबूत बनाती है, तर्कपूर्ण बनाती है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि तथ्यपूर्ण बनाती हैं और एग्जामिनर को यह विश्वास दिलाते हैं इस तरह के तथ्य कि नहीं, आपने अच्छी तैयारी की हुई है। एक और है यौन अपराधों से संबंधित मित्रों की, बाल संरक्षण अधिनियम 2012 में यह लिखा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना संगीन अपराध है। अब ठीक है, वहां लड़की शब्द है, वहां पत्नी शब्द नहीं है, तो उस रूप में तो थोड़ा सा सेफ है। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजें कंट्राडिक्टरी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब सही कर दिया है कि नहीं, किसी भी मामले में चाहे संबंध कुछ भी हो लेकिन अगर वो 18 वर्ष से कम उम्र की है तो वो अपराध है। इससे लग रहा है फ्रेंड्स कि जो बाल विवाह की परंपरा भारत में है शायद उस पर थोड़ी सी और रोक लगे। अभी भी बाल विवाह की परंपरा बहुत ही जबरदस्त है। लगभग ये माना गया है कि पूरे भारत में 2.25 करोड़ बाल विवाह हर साल होते हैं, कानून के बावजूद कि इसके विरोध में कानून है, क्योंकि ये सामाजिक परंपराएं हैं और सामाजिक परंपराओं को आप देखिए कि कैसे कानून से उतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, उसके लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ता है। और ये जो बाल विवाह का मामला है मित्रों, ये केवल परंपरा की ही बात नहीं है, साफ ये देखा गया है कि अगर बचपन में लड़की का विवाह हो गया, लड़के लड़कियों का, तो जो लड़की का खासकर जो पत्नी है, एक तो उसकी डेथ, उसकी उम्र कम हो जाती है, दूसरी बात है कि उसमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रजनन की जो उम्र है, जो ड्यूरेशन है, वो उनका बढ़ जाता है, और चूंकि बचपन से ही फिर बच्चे पैदा होने लगते हैं तो उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है, तो उनकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है, तो डेथ रेट भी बढ़ जाती है और जनसंख्या की वृद्धि भी तेज हो जाती है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स मैंने फ्रेंड्स आपको बाल विवाह के बारे में कुछ बैकग्राउंड्स आपको बताए हैं, और एक दो आपको डेटा और मैं बता देता हूं कि ये देखा गया है कि जो आर्थिक सांस्कृतिक रूप से कमजोर जो वर्ग है उनमें सबसे ज्यादा बाल विवाह की परंपराएं होती है। झारखंड में ये सबसे ज्यादा है, 14.1% बाल विवाह होते हैं वहां, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह की संख्या 3 गुनी है। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि शहरों में भी यह है, राइट। तो मित्रों ये मुख्य विषय के बारे में था, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं 2 क्लिपिंग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं फ्रेंड्स। एक है वंचितों की व्यापक बराबरी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको प्लीज जरूर अच्छे से देखिएगा। और दूसरा है निराशा एक रोग है फिर इससे शर्माना कैसा, ये जो मानसिक बीमारियां होती हैं निराशा की, हताशा की, जिसे हम अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, इस पर एक लेख है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये 4th पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस पर हम देखा होगा आपने कि बहुत कम बातचीत होती है। दूसरे और भी जो आर्टिकल्स हैं वो आप अपने ढंग से देख लीजिएगा। तो मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं आरती पटेल जूनागढ़ गुजरात से, दिव्येश प्रताप सिंह सतना मध्य प्रदेश से, अक्षय कुमार पांडे गोपालगंज बिहार से, हिमांशु गुप्ता उमरिया से, जोगेश्वर होता बलांगीर उड़ीसा से, और ओंकार कुलकर्णी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।